Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Chidambaranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
मैं ये चाहता हूं और ये कैसा कब होगा, जब आप अपने चित्त को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने स्वभाव को परमात्मा से जोड़ेंगे, भगवान से जोड़ेंगे। तो एक ऐसा पैंट चढ़ाइए जो नॉन स्टिक हो, क्या कोई चिपकाने की कोशिश करे तो भी चिपके ना, और वो एक ही है, अध्यात्म चिंतन, परमात्म चिंतन, भगवत चिंतन, सकारात्मक चिंतन। अच्छा, ये भी व्यापक है, आत्मचिंतन, ईश्वर चिंतन, अध्यात्म चिंतन, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा करो कि जहां संसार ना हो। संसार को छोड़ के आगे कहा है देहाभिमानम परिहृत्य, देहाभिमान को छोड़ दो। कैसे? दूरा, दूर से ही छोड़ दो, यानी देहाभिमान से संबंधित बात अगर कहीं भी पैदा हो रही है तो वहीं से उसका त्याग करो। ये महत्वपूर्ण है और ये हमें करना चाहिए, ये साधन शैली होनी चाहिए जीवन में। लेकिन हम सिर्फ निंदा करते हैं, सिर्फ निंदा करते हैं। काम बुरा, क्रोध बुरा, लोभ बुरा, गालियां दो बैठ करके, और देते ही हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। संसार में इतनी चीजें हैं कि आपकी गालियां खत्म हो जाएंगी लेकिन वो चीजें खत्म नहीं होंगी। गालियां तो सीमित है, संसार खत्म नहीं होगा। और मैं मानता हूं कि एक दोष से बचने की कोशिश आप जीवन भर करो, हजार दोष लाइन में खड़े हैं। और मैं कहीं सुन रहा था कि ये संसार आपको वहां ले जाके मारता है जहां आपने सोचा भी नहीं होगा, वहां पटकता है आपको, अच्छा मैं यहां गिर गया, मुझे तो होश ही नहीं था। और अधिकांशतः गड्ढों में आदमी कम, जहां गिरने की संभावना नहीं होती वहां ज्यादा गिरता है, क्योंकि गड्ढे आने पर आप सावधान हो जाते हो, और जहां गड्ढे नहीं आपको लगता है यहां तो ठीक ही है, तो आप असावधान होकर के चलते हो और वहीं गिरते हो। आप कहते भी हो, अरे सोचा भी नहीं था कि यहां भी गिरूंगा। जहां आप नहीं सोचते वहीं तो गिरते हो, जहां आपने सोच लिया, जहां सावधान हो गए, वहां गिरने की संभावना तो खत्म हो गई। तो आपने सोचा कि स्त्री खतरनाक है तो स्त्री में नहीं गिरोगे, लेकिन कहीं और गिरोगे। और ये सब गिरने वाले हैं, सब गिरते हैं क्योंकि चिपक जाते हैं। तो निंदा नहीं, स्तुति होनी चाहिए। किसकी? ईश्वर की, बनाने वाले की। अच्छा एक बात बताइए, जिसने संसार बनाया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसने, जिसको बनाया वो महत्वपूर्ण है? मुझे लगता है बनाने वाला महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि परमात्मा ने संसार बनाया, सही कहते हैं, परमात्मा ने संसार बनाया, और फिर कहते हैं संसार बेकार है। अजीब बात है ना, ये गिरीश भाई ने कपड़े बनाए तो कपड़े बढ़िया, नहीं गिरीश भाई तो बढ़िया है, कपड़े बेकार है, लेकिन कपड़ों से ही तो इनकी महिमा है। कि कोई व्यक्ति स्वर्णकार ने आभूषण बनाए, स्वर्णकार बढ़िया है लेकिन आभूषण बुरे हैं, बोलिए। अच्छा फिर स्वर्णकार की पहचान क्या है? आभूषणों से ही तो पहचान। हम लोग पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, धनमाद्यसि यतोन्वयादि तर्तशार्थेषु विज्ञास्वरार्थे नहि ब्रह्मवेदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय, है ना। ब्रह्मसूत्रकार कहते हैं धनमाद्यसि यता, परमात्मा की पहचान क्या है जरा बोलो, बताइए ना, भगवान कौन है? अच्छा मैं तो सोचता ब्रह्मसूत्र पढ़ते हैं आप लोग तो बताएंगे अच्छी तरह से। धनमाद्यसि यता, परमात्मा कौन है, ये व्याख्या है ना, जन्माती सी यथा, परमात्मा कौन है? अरे जिसने ये संसार को बनाया वही है ना, बोलो गलत कह रहा हूं? अगर पूछा जाए आपसे कि ईश्वर कौन, परमात्मा कौन, तो सबसे सामान्य साधारण और अच्छा तरीका क्या है, उसको हमने देखा तो है नहीं, देखा है भगवान को, देखा है नहीं, देखा है परमात्मा को, देखा तो है नहीं। लेकिन अगर कोई पूछे कि वो अच्छा शुरू से शुरू करते हैं, बोलो आप बोल ना, परमात्मा है या नहीं, बोलो है। अच्छा अब परमात्मा कौन है ये कोई पूछे तो, जिसने संसार बनाया, जन्मादि से यता। अच्छा बनाया ही नहीं, जिसने रखा भी बना के, समय आने पर जो नष्ट भी करता है, जन्मादि जिससे होते हैं, यही अर्थ है ना। कमाल की बात है, हम व्याख्या ये कर रहे हैं ब्रह्मसूत्र में भागवत में व्याख्या ये कर रहे हैं परमात्मा की पहचान किससे है, संसार से। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये जिसने बनाया वो भगवान, जिसने बनाया तो जिस बनाई हुई चीज से जिसकी पहचान है वो बढ़िया, और ये जो बना हुआ है ये कमाल है, ये बेकार है। इसलिए हमको मीराबाई अच्छी लगती है कि वो संसार की निंदा नहीं कर रही, वो तो गाती जा रही है, वो तो मस्त है, आनंदित है। संसार की निंदा जहां शास्त्रों में की, उसका एक उद्देश्य है, ध्यान देना आप, एक उद्देश्य है, इतना समझने की कोशिश करना कि उद्देश्य यह है कि जो संसार तुमने देखा उसमें अगर आप फंस गए तो परमात्मा छूट जाएगा, ये समझाने के लिए निंदा है। मेरी बात समझे, ये समझाने के लिए निंदा है, लेकिन हमने गलत काम किया। समझाना शास्त्र ये चाहते थे कि जहां चिपके हो उसको छोड़ो और जहां पहुंचना है वहां चलो। हमने समझ लिया कि शास्त्र कह रहे हैं कि ये बेकार है, तो हमने समझा ये कि ये बेकार है और कहना शुरू कर दिया ये बेकार है, ये बेकार है, ये शास्त्र भी खोपड़ी पकड़ ली, हे भगवान किससे पाला पड़ा था। उद्देश्य ये नहीं था, मतलब ये नहीं था कि जैसे आप किसी को कहो कि ये गड्ढा बेकार है, ये कीचड़ है, ये गंदा है, ये ठीक नहीं है, उसे ओ अभी तक नहीं पता, अच्छा ये गंदा है, हाँ अब वो खड़ा हो गया और उपदेश करने लगा, देखो ये गंदा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं है, सुना लोगों ने, और वो दिन भर यही चिल्ला रहा है। आपका ये उद्देश्य था, बोलो, कि किसी ने कहा शराब बुरी है, गंदी है, बेकार है, ठीक नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि शराब को छोड़ो, अच्छी चीजें हैं उनकी तरफ जाओ, अर्थ यही है ना। अब आप बैठ जाओ, शराब बुरी है, शराब गंदी है, शराब ठीक नहीं है, दिन भर चिल्लाइए, दूसरों को बताइए, सुनाइए, लेकिन खड़े रहिए वहीं मधुशाला में ही बैठे रहिए, शराब के बीच में ही रहिए, शराब की बुराइयां करते रहिए, शराब को गालियां देते रहिए, और बोलो शराब को पीते भी रहिए, शराब को पीते भी रहिए और दिन भर गालियां दीजिए, ये ठीक नहीं है। अब कोई पूछे कि ठीक नहीं तो पीते क्यों, बोले क्या करें, पीना पड़ता है, कोई चारा नहीं है। अरे चारा तो बहुत है, तुम बाहर निकलो तो, तुम थोड़ा दूसरी जगह देखो, तुमने पहली बात अगर पूरी सुनी होती तो तुमको समझ में आता कि ये जगह ठीक नहीं है, चलो यहां से। और बाहर अमृत भरा पड़ा है, कि दूध है, कि पानी है, कि शरबत है, कि न जाने क्या क्या है, तो उनका पान करो। लेकिन हम बैठे वहीं हैं, चिपके वहीं हैं, और निंदा वहीं की कर रहे हैं। हमसे गलती यह हो गई कि हम संसार में ही बैठ करके संसार की निंदा कर रहे हैं, कि हम संसार का ही उपभोग करके संसार की निंदा कर रहे हैं, कि हम संसार को ही खाते पीते रह करके संसार की बुराई कर रहे हैं। नहीं कर रहे, ऐसा ही हो रहा है, यह ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। हम प्रेमपुरी में यही सुनते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, दुनिया बुरी, संसार असत्य, संसार झूठा, संसार ऐसा, संसार वैसा, ये काम बुरा, ये क्रोध बुरा, ये लोभ बुरा, यही सुन रहे हैं। लेकिन अद्भुत और कमाल की बात है कि यहां से निकलने के बाद में काम ही करते हैं, क्रोध ही करते हैं, लोभ ही करते हैं, और कोई पूछे तो कहते यही है, ये बड़ा झंझट है, सब बेकार की बात है, सच्चा तो सिर्फ ईश्वर का नाम है। सब बेकार है, झंझट है, तो फिर चिपके क्यों हो? बस आचार्य यही समझाना चाहते हैं, कंथामपि स्त्रीविव कुत्सयन्ता, चीज छोटी हो बड़ी हो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आपके मन में आ गई तो वो बुरी ही है। भगवान को छोड़कर के मन में अगर कोई भी चीज चिपकी तो वो बुरी है, चाहे वो चिपकने वाली स्त्री हो और चाहे वो चिपकने वाला कपड़ा हो, बराबर है दोनों। क्योंकि अगर ये चिपकेगा तो इतनी जगह वो परमात्मा नहीं रहेगा, ईश्वर नहीं रहेगा, इतनी देर के लिए भगवान छूटेगा, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि वो अगर गैप आ गया तो आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है, वो फ्यूल अगर उसमें बीच में वो एयर आ गया, हवा आ गई, इंजन बंद होने वाला है। शास्त्र का चिंतन, महत्वपूर्ण चिंतन ये है कि किसी भी चीज को महत्व मत दो, खुद को छोड़कर। और हमने खुद को छोड़कर सबको महत्व दिया, सबको। मैं कई बार बोलता हूं, आपने न जाने मेरे मुंह से ही कई बार सुना होगा, कि हमने अपने टुकड़े कर दिए, हमने थोड़ा सा धन में बांट दिया खुद को, कि हमने थोड़ा सा परिवार में बांट दिया खुद को, कि हमने थोड़ा सा दुनिया में बांट दिया, समाज में बांट दिया, इसमें बांट दिया, उसमें बांट दिया, बांटते 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 इतना बांटा, इतना बांटा कि खुद खत्म हो गए। मैं हमेशा कहता हूं कि छोटे से प्यारे से बच्चे को देखो, खुश रहता है, बड़ा मस्त रहता है, आनंदित रहता है ना, खिलखिलाता रहता है। मैं तो देख करके दंग रहता हूं कि उसके पास में संसार की कोई वस्तु नहीं है, आपको पहचानता नहीं है, जानता नहीं है, और वो खुश, आंखें खुली, हंस रहा है, क्यों पता नहीं, बड़ा आनंदित है। और उसकी मस्ती देख करके आप खुश होते हो कि क्यों मस्त है ये, किस लिए खुश है, और वो बड़ा प्रसन्न है, आनंदित है, क्यों? क्योंकि वो अपने में है, क्योंकि वो खुद में है, क्योंकि उसने अभी अपने आप को बांटा नहीं है। लेकिन जरा देखो, उस बच्चे ने थोड़ा सा बांटा कि मां को पहचाना, ये मां है, अब उसके बिना वो खटकने लगता है। अगर मां जा रही है तो उसकी मस्ती कम होने लगती है, ध्यान दिया आपने, बच्चा बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा खुश रहता है, लेकिन एक व्यक्ति को पहचाना उसने कि ये है, और जहां वो गई तो उसकी मस्ती खत्म हो गई। जरा सोचो, जरा सोचो कि एक मां से जुड़ने के बाद उस बच्चे की मस्ती में खलल पड़ने लगता है, तो हमने तो न जाने कितनी दुनिया को जोड़ रखा है, इसलिए हम मस्त नहीं है। अब समझ में आया, हमने इतना, फिर बड़े हो गए, फिर पिता भी पहचानने, अब बाप भी जा रहा है तो भी रो रहा है, फिर भाई भी पहचान में आया, वो जा रहा है तो भी रो रहा है, फिर बहन भी पहचान में आई, फिर रुपया भी पहचान में आया, फिर घर भी पहचान, अब घर छूट रहा है तो भी रो रहा है, और बाद में वो मस्ती पता नहीं कहां चली गई, रोना ही बचा। पूछा, क्यों रो रहे हैं? पिताजी जा रहे हैं इसलिए। अच्छा, क्यों? पिताजी से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, फिर रो रहा है, क्यों रो रहे हो? बहन जा रही है इसलिए। क्यों? बहन से बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत प्यार एक से किया जाता है कि सबसे किया जाता है? सबको काट दिया। क्यों रो रहे हो? क्योंकि पैसा चला गया तो पैसे से बहुत प्यार करते हैं। इतने टुकड़े किए हमने, ये खत्म हो गए, हम खत्म हो गए। शास्त्र का उद्देश्य एक ही है कि जितने टुकड़े किए थे सब वापस लाओ, उठा उठा के। रामायण में बहुत बढ़िया गोस्वामी जी ने लिखा, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, इतनी जगह हमने अपने आप को बांटा है ना, जननी मां, जनक पिता, जननी जनक बंधु भाई, सुहृद पत्नी, मित्र परिवार, मित्र सुहृद दोस्त यार, जननी जनक बंधु सुत पुत्र दारा पत्नी या पति, तन शरीर, धन जानते ही है, भवन घर, और परिवार नहीं, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद, सुहृद यानी मित्र, और परिवार समाज अपना परिवार इतनी जगह बांटा, ठीक है, बांट तो दिया, अब समस्या खड़ी हो गई। तो गोस्वामी जी इसका सोल्यूशन बोलते ना, समाधान बहुत बढ़िया देते हैं, बहुत बढ़िया, जो मैं कह रहा हूं उसका विस्तार है, अथवा उन्हीं की बात को मैं आपके सामने कह रहा हूं। मैंने कहा ना अभी कि जहां जहां आपने बांटा था सब जगह से वापस लो, वापस लो। कि जैसे आप पैसा बांट देते हो, आप खुद को जरूरत महसूस होने लगी तो है ही नहीं, सब तो दे दिया, तो क्या करते हो कि भाई अब हमको जरूरत है वापस दो, तो सब जगह से वापस ले लो। तो अभी तो आपने पहले बांटना शुरू किया, बड़े उदार हो गए कि अपना प्रेम सब जगह बांट दिया, कि बहुत वाला प्यार सबको दे दिया, लेकिन अब यहां प्यार ही नहीं रहा, खुद रो रहे, अपने लिए प्यार नहीं रहा। तो ये जो सब जगह प्यार बांट देते हैं ना, इसलिए लटक जाते हैं, क्योंकि खुद के प्रति प्यार नहीं रहता, जबकि प्यार तो अपने लिए भी होना चाहिए, यहां बैठे हुए परमात्मा से होना चाहिए। ये बात समझने की क्या सोल्यूशन है, समाधान क्या है, बड़ी प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है। सबका ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरिडोरी, यह समाधान है कि जहां जहां आपने वो जाल फेंका था, कि टुकड़े फेंके थे, सबका ममता ताग बटोरी, बटोरना जानते हैं, इकट्ठा करना, समेटना, ले आइए, सब समेट लीजिए, वापस लाइए, बहुत हो गया, ये रोना धोना खत्म करो, अब वापस लाओ। वापस ले आए, फिर क्या करें, बोले आप रस्सा बनाओ मोटा सा, फिर क्या करें, तो कहा रस्सा समझ रहे हैं, मोटी रस्सी, और अब उसके दो सिरे हैं, एक इधर हिस्सा एक इधर, बहुत बढ़िया बात कही। तो कहा कि अब एक काम करिए, उस मोटे रस्से को एक सिरा भगवान के चरणों में बांधिए और एक सिरे से अपने मन को बांधिए, बात खत्म। कि जैसे ट्रेन में आपका बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते अगर बार बार वो ट्रेन के दरवाजे पर पहुंच रहा है तो आपको डर लगता है, तो आप क्या करते हैं, उसके हाथ में रस्सी बांध देते हैं कि कपड़ा बांध देते हैं और अपने पास में रख ले, मान लो कि कहीं भी जाए लेकिन नीचे नहीं गिर सकता। ऐसे ही अपने मन को परमात्मा से बांध दीजिए कि कहीं भी जाए, कहीं भी, लेकिन परमात्मा से नहीं छूटे। उद्देश्य शास्त्र का यह है, तुमको दुनिया में जाने से किसी ने रोका नहीं है, जाओ, लेकिन जुड़े ईश्वर से रहो। भागवत में वर्णन आता है कि भीम जरासंध से लड़ने के लिए जाने लगे और 27 दिन तक लड़ते रहे, लेकिन जब वो मार नहीं सके तो भगवान से मिलने के लिए गए। बड़ी प्यारी कथा लगती है हमको, क्योंकि भीम जैसा आदमी जल्दी भगवान के पास नहीं जाता, और शायद अपने जीवन में भीम अकेला वो दिन था जब अकेले भगवान के पास में गए, रात का समय भगवान, और लेटे हुए वो भीम को देखा तो खड़े हुए, भीम भैया क्या बात है, कहते महाराज कुछ बात करनी थी, बताइए, लड़ने की तो इच्छा हमको भी रहती है लेकिन अगर ये युद्ध चलता रहा तो बहुत जल्दी आपको सूचना मिलने वाली है कि भीम गए खत्म। भगवान ने कहा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, आपने हमको बता दिया, आप निश्चिंत हो जाइए। फिर भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा भीम भैया एक काम करना, कल लड़ना, देखो लड़ने से मना नहीं किया, ये नहीं कहा कि भाग चलो, निषेध नहीं किया कि छोड़ो, अगर मरने का डर है तो लड़ना छोड़ो, कि चलो भाग चलते हैं, ये नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। ये भगवान की विशेषता है कि ना उन्होंने अर्जुन को भागने की सलाह दी, ना भीम को भागने की सलाह दी, और शायद भगवान ने किसी को भागने की सलाह नहीं दी। कमाल की बात यह है कि भगवान ने किसी को भागने की सलाह नहीं दी, हम फिर भी भागने का ही काम करते हैं कि छोड़ो भागो। भीम को क्या कह रहे हैं भगवान कि कल लड़ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि 27 दिन तक लड़ने के बाद भीम को लग रहा है कि मर जाएंगे, और फिर भी भगवान क्या कहते हैं, भागना नहीं, लड़ो, चलो, क्या बात, अद्भुत बात है, कितनी प्यारी बात है। और भीम से कहते हैं कि लड़ना, तो भीम भी एक बार सोच रहे होंगे ये क्या मतलब है, मैं तो समाधान मांगने आ, कहते लड़ो, और भीम को लग रहा था कि भगवान कुछ शक्ति दे देंगे, भगवान कुछ हाथ दे देंगे, क्या बोलते हो तो शक्तिपात कर देंगे, कुछ तंत्र मंत्र कर देंगे, कुछ कान फूंक देंगे कि हमारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि महाराज कुछ चमत्कार कर दीजिए कि हमारा मन भगवान में लग जाए। चमत्कारों से मन लगेगा, हद हो गई। भगवान कोई जादूगरी की चीज है कि वश में आ जाएंगे? और शायद भीम यही सोच के गए हों, लेकिन भगवान विलक्षण है। भगवान ने कहा, भीम भैया आप जाना लड़ना, बस एक काम करना छोटा सा, क्या कि लड़ना जरासंध के साथ और देखना मुझे। आहा, ये बात छू गई हमें। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध का निषेध नहीं है, युद्ध मत करो ये नहीं कहा, युद्ध करो। कैसे? माम अनुस्मर, हम युद्ध छोड़ने पर तैयार हैं, हम भागने के लिए तैयार हैं कि ये छोड़ दो ये छोड़ दो। मुझे बताओ एक भी गोपी को भगवान ने अगर ये कहा हो कि घर छोड़ दो, कहा? नहीं कहा। उल्टा भगवान तो ये कहते वापस जाओ, और कहते नहीं वापस भेजा। भागवत में कई प्रमाण है, गोपियों को भेजा, ब्राह्मणों की पत्नियां वो भी भगवान के पास आ गई और जाने के लिए तैयार नहीं हो, भगवान ने कहा नहीं नहीं वापस जाओ। हम लोग क्या सुनते हैं, क्या करते हैं? भगवान कुछ और कह रहे हैं, भगवान कुछ और समझा रहे हैं, हमने कुछ और समझ लिया, हमने समझ लिया छोड़ दिया तो हम बड़े त्यागी हो गए, बहुत महान हो गए। क्या बात करते हो? भगवान कहते हैं ये तो हमने कभी कहा ही नहीं और तुमने वो किया। क्या कहा? ये नहीं कहा कि छोड़ दो, ये कहा कि ये करो। क्या करो? क्या करो? माम अनुस्मर। भगवान कहते हैं भोजन कर रहे हो ना, करो लेकिन मुझे जरा याद करते हुए करो, मुझे खिलाते हुए खाओ, है ना? कपड़े पहन रहे हो पहनो, जरा मुझे भी याद करते हुए पहनो। घर से निकल रहे हो निकलो, जरा मुझे याद करते हुए निकलो। सफर कर रहे हो बिल्कुल करो, लेकिन मुझे याद करते हुए करो। क्या प्यारी बात है, कितनी सुंदर बात है। तो महत्व ये था और कुछ नहीं। तो बार बार, आज रविवार था इसलिए थोड़ा सा लेट कर दिया, तो बार बार सकारात्मक भाव से और आप परमात्मा से जुड़े तभी आप भाग्यशाली हैं। कंथाम अपि स्त्री वो कुछ संयंत्र का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हर वो चीज आपके लिए खतरनाक है जो परमात्मा के चिंतन में बाधा बने, वो कुछ भी हो, कुछ भी। अगर आपका ध्यान करते करते, भगवान का भजन करते करते और आपके मन में अगर रसगुल्ले का भी ख्याल आ रहा है तो वो उतना ही बुरा है जितना कि स्त्री का चिंतन, ये समझना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय।